श्री विष्णु तथा शिव जी के द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। भगवान विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्मस्वरूप है, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्यों को भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध है, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी सहस्त्रों सूर्यों और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित है, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अनादि देव हैं, आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए आपको अच्युत भी कहा जाता है। आप संकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेष शेखर है। हे महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। हे सर्वेश्वर, आप मरुद्गणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीरसाई नारायण विष्णु, शंकर पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। हे प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त करके रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब और है, हर दिशा में है। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपको अनेक मुख वाला देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों को परम गति और पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष है। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको नमस्कार है। हे आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप मानता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। हे गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। हे भगवान, आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी आप संसारी हैं। हे देव, इंद्रियों में शून्य होने पर भी आप सृष्टि का सर्जन कैसे करते हैं? हे भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म प्राप्त रूप का ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले हे परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं। जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है, आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों का भी उत्पत्ति स्थान है। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बात बारंबार कही जाती है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। उनको जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है वह फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता। वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याणमय स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ है। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख हैं, वे नरक में पड़ते हैं। हे प्रभु, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुद्गण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूप भूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। हे भगवान, आप अनंत हैं, आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई स्तुति का स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित होकर आपके स्वरूप के चिंतन को मन में लगाकर यह स्तवन किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक और सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे केशव, इसमें संदेह नहीं है कि आप सर्वज्ञ हैं और आप ज्ञान की संभूत राशि है। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति भाव से नमस्कृत होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्र वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा हैं और आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव भाव हुआ है। मुंगे के समान लाल अंगों तथा करपल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं, कृपया बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कन्याकुंज में देवगर्भ और भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्म जन्मा, वानरी किष्किंधा में सूर्यप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्रदेश में पद्महस्त, श्यामलापुरी में भवरुद्ध, अहिच्छत्र में जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप आसाम में शुभकर, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनद्र प्रदेश में स्थिविराकार, उज्जैन में पितामह, कौशंबी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनिंद्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गंगा द्वार हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर देविका में स्त्रुचा हस्त, चतुष्पथ में स्त्रुवहस्त, वृंदावन में पद्मबाणी, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोलपक्ष में गोपिंद्र, यमुना तट पर सुचिंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोंकण देश में मद्राक्ष, कौंपील्य में कनकप्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुशस्थल में शंभु, लंका में पुलत्स्य, कश्मीर में हंसवाहन, अबुर्द आबू में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेघक में श्रुतिदाता, प्रयाग में युजिष्वापति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुरप्रिय, अंकोल कर्म में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ में द्विजप्रिय, ऋषिविद में दुराघर्ष, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में शुरूप, मालवी में पृथुद्रदर, साकंभरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंध, कदम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, त्र्यंबक में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में वैधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणी, दंडपुरी में विरूपाक्ष, दुत्पातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी अमरावती में देवनाथ, धूताशाढ़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाहा, चंडा में गरुड़प्रिय, महोदय में महायज्ञ, युपकेतन में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्मबोधन, देवदारु वन में लिंग, उदकपथ में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनादीप, त्रिकुट में गोनर, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सूरत प्रिय, भूतवापी में सुभांग, सावली में भसक, अक्षर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वर्धा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पर्णद में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, रुकस्थल में सुवृद्ध, वठक में मार्कंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्मगृह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरांतक, हे त्रिपुरांतक, ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर में कभी पाप, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनके मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य तथा धूप चढ़ाता है और ब्राह्मण आदि को भोजन से तृप्त कराता है और जो स्थिरता पूर्वक मेरा ध्यान करता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का क्षेत्र, फल तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता है और वो जो इस प्रसंग को सुनता है वो समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त करता है। हे शंकर, इस विषय में अधिक तो क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जाप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी तथा मिट्टी के करवे में लेकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल मिलता है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्यापासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भलीभांति सोच विचार करके कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान करके पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से पितर ब्रह्मा के एक दिन तक तृप्त रहते हैं, एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। हे शिवजी, अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ द्विज जातियों के द्वारा दिए हुए पिंडदान नीच पुरुषों के नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में पितरों को स्नान करने का श्राद्ध करने का विधान है। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर फल की प्राप्ति पितरों को नहीं पहुँचती। आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकान्न साधारण मनुष्य देख लेता है तो उसकी कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनुजी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। आपको ब्राह्मण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के समय हो न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना ही बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं और उससे जल पाने की अभिलाषा करते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई कार्य करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सत्ययुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र का और कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ में किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं पर नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर के तीर्थ का स्मरण कर लेता है उसे समस्त तीर्थों के आचमन का फल प्राप्त होता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातःकाल और संध्या काल